ओम शांति। आज है 10 जनवरी 90 का व्यक्त बाप दादा का क्लास। माउंट आबू से आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। जो मोती और कंकड़ है दोनों को परखता है और फिर निर्णय करता है, उसके बाद मोती ग्रहण करता है। कंकड़ पत्थर छोड़ देता है तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना, इन तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाई है। तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं है, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादिनी आप सभी हो। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी ये तीनों विशेषताएं अति आवश्यक हैं। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार से बाप को पहचाना, अपने आप को पहचाना। किसको किसको पहचाना? परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु बाप जो आत्माओं का बाप है उसको पहचाना। वो इन आंखों से देखने की चीज नहीं है, ज्ञान के आधार से, अनुभव के आधार से परखने की चीज है, पहचानने की चीज है। और अपने आत्मा को भी पहचाना, समय को पहचाना, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना। इसके बाद निर्णय किया तब ही ब्राह्मण जीवन धारण की। ये वही कल पहले वाला बेहद का बाप है, परमात्मा है। मैं भी वही कल पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ, बाप के वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ। इस परखने के बाद निर्णय किया, बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में हैं, बहुत अच्छा कहती रहती है, लेकिन परमात्मा पहचान व परखने की शक्ति न होने के कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है और क्या करना है। इसलिए वो असली ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। सहयोगी बनते हैं लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बना सकते, सहज राजयोग को अपने जीवन में धारण नहीं कर सकते, क्योंकि निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति ये दोनों ही शक्तियां नहीं है। इसलिए होली हंस नहीं बन सकते। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। तो होली हंस की विशेषता है पहली शक्ति परखना अर्थात पहचानना, अपने बाप को पहचानना, अपने आप को पहचानना और इस ड्रामा के राज को जानना। तो आप होली हंसों में ये दोनों शक्तियां हैं ना, क्योंकि बाप को पहचाना, अपने आप को भी पहचाना निर्णय भी ठीक किया तब तो ब्राह्मण बने और चल रहे हो। इस बात में तो साफ के साफ पास हो, पक्के पास हो, लेकिन जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलता पूर्वक हर कर्म रहे व हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफलता रहे। हर प्रकार की सेवा, मनसा हो, वाचा हो, कर्मणा हो, तीनों में सदा सफलता का अनुभव हो। उसका भी आधार परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति है। तो इन दोनों शक्तियों में फुल पास हो, सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा न होने का कारण चेक करो। तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए अथवा शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन होता क्या है, जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए तो न दे करके व न परखने के कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो व विधि अपनाते हो, इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं हो पाती। जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि ना आए तो क्या होता है, ठीक विधि ना होने के कारण इलाज एक से अनेक प्रकार के संशय पैदा होते हैं। अच्छा ये दवाई, ये नहीं तो दूसरी दवाई, फिर और अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती। जिसको साधारण शब्दों में बाप दादा कहते हैं, हर एक की नब्ज को पहचानो। चलना और चलाना भी जरूरी है तो क्या करना पड़ेगा, पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़ेगा। इस बात में अंतर पड़ जाता है। जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हैंडलिंग का फर्क, कहते हो ना, इनकी हैंडलिंग पुरानी है, इनकी हैंडलिंग नई है, तो अंतर क्यों पड़ा? क्योंकि हर समय, हर आत्मा और हर कार्य को, समय को परखने की शक्ति चाहिए। टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन विस्तार से और बेहद की परखने की शक्ति की आवश्यकता है। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति इतनी है, वायुमंडल क्या है और उस आत्मा को सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है। जैसे कोई कमजोर शरीर होता हो, कमजोर शरीर वाला हो और उसको ज्यादा से ज्यादा ताकत का इंजेक्शन दे दिया जाए तो क्या हालत हो जाती है, पेशेंट के बजाय पेशेंस हो जाता है, हार्ट फेल हो जाएगा, शांति में चला जाता है। ऐसे ही अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमजोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ, उसका मूड, उसका समय, वायुमंडल परख नहीं सको तो रिजल्ट क्या हो जाती है, रिजल्ट उल्टी हो जाती है ना। एक तो दिल शिकस्त हो जाता है, दस एक नब्बे की अव्यक्तवाणी का दूसरा बीज, दिल शिकस्त हो जाता है और शक्ति न होने के कारण ग्रहण नहीं कर सकता और ही जिद्द और सिद्ध करने में उछलता है। आपने तो अच्छी भावना से किया लेकिन सफलता न मिलने का कारण परखने और निर्णय शक्ति की कमी है। इसलिए सफलता मूर्त बनने में परसेंटेज में चला जाता है। तो सारे दिन के कर्मों और संबंध में परखने की शक्ति की आवश्यकता हुई ना। इसलिए शिक्षा भल दो लेकिन सब बातों को परख करके फिर कदम उठाओ। ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में भी अगर आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा को परखने के बिना कितना भी अच्छे से अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी। अच्छा अच्छा कहना तो एक रस्म रिवाज हो गई है, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो कहते नहीं हो, लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो उसमें समीपन हो करो, उसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यक है। जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है और उसको आप डबल जीवन मुक्ति दे देते हो, लेकिन वो रुचि नहीं रखेगा। प्यासे को भोजन दे दो तो उसकी प्यास तृप्त नहीं होगी, पानी के प्यासे को 36 प्रकार का भोजन दे दो लेकिन वह संतुष्ट पानी की बूंद से ही होगा ना, न कि भोजन से होगा। तो मुक्ति के इच्छुक को परख करके अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी और जीवन मुक्ति में परिवर्तन भी हो जाएगा। इसको धारणा की बातें सुनना अच्छा लगता है, उसको आप 5000 कल्प अथवा 5000 वर्ष का ड्रामा गीता का भगवान कौन ये बताना शुरू कर देंगे तो और ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए सेवा में भी आत्मा की स्थिति उसकी अवस्था क्या है उसको परखना आवश्यक है। तो सेवा में सफलता का आधार किस शक्ति पर हुआ, परखने की शक्ति चाहिए ना। चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा हो चाहे सेवाधारियों की सेवा हो, दोनों में सफलता का आधार एक ही है। तो होली हंस की विशेषता, सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ। परखने की शक्ति यथार्थ है शेष है तो निर्णय भी यथार्थ होगा, और आप जिसको जो देना चाहते हो वो उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही हो जाए आ जाएगी, और वो क्या बन जाएंगे, नंबर 1 सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो चाहे सेवा में चाहे संबंध में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्षण को धारण करो। तो सारे दिन में ये चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई और कहाँ करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही। करने के बाद करेक्शन अपने आप होती जरूर है, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है। चाहे समस्या के बस बस समय के परिस्थिति के बस कोई आत्माओं के संग के बस अथवा माया द्वारा मनमत के बस उस समय परवश हो जाते हैं, लेकिन समय परिस्थिति संग का प्रभाव मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है फिर दिव्य बुद्धि अपना काम जरूर करती है। जिसको आप लोग कहते हो जोश से होश में आ गए, फिर महसूस होता है ये करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए थी अथवा करनी चाहिए, लेकिन रजिस्टर में व कर्मों के हिसाब की किताब में दाग नहीं, लेकिन बिंदी तो पड़ गई, बिल्कुल साफ तो नहीं रहा ना। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। टीचर्स तो कर्मों की लीला को अच्छी रीति जान गई है ना। टीचर्स सारा दिन क्या गीत गाती रहती है कि वाह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला, कर्मों की गहन गति की लीला नहीं श्रेष्ठ कर्मों की लीला। दुनिया वाले तो हर कर्म में हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं कि हाय मेरे कर्म, आप कहेंगे वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म। अब आगे बढ़ो कि सदा वाह श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म नहीं हो। कर्मों को कूटना तो खत्म हो गया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म हो इसमें अंडरलाइन करना। अगर मिक्स कर्म है, साधारण भी है श्रेष्ठ भी है, तो सफलता भी मिक्स हो जाती है। अभी विशेष अटेंशन ये देना है कि साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो। इस पर भी कभी सुनाएंगे कि बाप दादा हर एक की रोज की दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं, साधारणता कितनी है और विशेषता कितनी है। बाप दादा ये रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप दादा के पास देखने के साधन इतने हैं जो एक ही समय पर देश विदेश के सभी बच्चों को देख सकते हैं, अलग अलग देखने की आवश्यकता ही नहीं। पांच मिनट में सबका पता लग जाता है। बच्चों के वाह वाह के गीत भी बाबा सुनते हैं। साथ साथ सामान बनाने की एम से चेक भी करते हैं। सुनाया था ना कि बाप से इसलिए वह बाप की पहचान, इसमें तो सब पास हो और कभी कभी तो कमाल के काम भी करते हो। अच्छी कमाल लेकिन धमाल वाली कमाल, कोई कोई बच्चे धमाल की भी कमाल करते हैं। दस एक नब्बे की अद्वैतवाणी का तीसरा पेज, क्या धमाल करते हैं? करते तो धमाल हैं, लेकिन कहते हैं ये तो हमारी कमाल है, इसलिए बाप दादा कहते हैं परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अपने कर्म को भी परख सकेंगे और दूसरों के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे। उल्टे को सुल्टा नहीं कहेंगे, ये परखने की शक्ति की कमी है। और सदा एक बात याद रखो, सबके लिए ये बात कह रहे हैं, कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ व साधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि ये राइट है व रंग है, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है, वशीभूत हो जाते हैं, उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है वो जानो। क्योंकि उस समय अपनी बुद्धि तो वशीभूत होती है, राइट को भी रंग समझते हो, रंग को रंग नहीं समझते हो, राइट समझते हो, फिर जिद करेंगे या तो सिद्ध करेंगे, ये निशानी होती है बड़ी वशीभूत होने वाली बुद्धि की। ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो कि जिनों को बाप ने निमित्त बनाया है वो निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं उसको महत्व देना चाहिए। सिर्फ बाप के डायरेक्शन कोई महत्व नहीं देने की बात कही, बाप ने जिनको निमित्त बनाया है वो निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं उनको भी महत्व देना चाहिए। उस समय ये नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रहे हैं, इसी बात में धोखा खा लेते। निमित्त बने हुए श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो गलती भी बदल करके आपके प्रति सही हो जाएगी, तो ऐसे ही निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी भी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाना चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो, आपका पाप नहीं बनेगा, आपका काम तो ठीक हो जाएगा क्योंकि बाप बैठा है, बाप पाप को बदल लेगा। ये गुह्य रहस्य है, गुप्त मशीनरी है, इसलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ, इसमें आपका ही फायदा है, नुकसान भी बदल करके फायदे में हो जाएगा, ये बाप की गारंटी है। समझा? इसलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है, बाप जिम्मेवार है, जिनको निमित्त बनाया है उनका भी जिम्मेवार बाप है। बाप है या नहीं है, या बाप ऊपर उड़ गया? अगर बाप है तो बाप जिम्मेवार है, आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है। ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है, सोच समझ के ड्रामा के लामुजीब निमित्त बनाया है। किसको? बाप ने आत्माओं को निमित्त बनाया है। जैसे सेंटर इंचार्ज होते हैं, जोनल इंचार्ज होते हैं, उनको बाप ने निमित्त बनाया है। लेकिन बाप की बात हो रही है और मनुष्य आत्माओं की बात नहीं है, समझा? टीचर्स को अच्छा लगता है ना, इसमें फायदा है, बोझ हल्का हो गया। कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने, आप तो हल्के हो गए ना। लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, समान मात्र हो, इन गुह्य बातों को बाप जाने और जो समझदार बच्चे हैं वो जाने। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना, क्योंकि निमित्त बाप ने बनाया ना, बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है। बाप दादा का अति स्नेह सभी बच्चों से, ऐसे नहीं है कि निमित्त बने हुओं से ही प्यार है, दूसरों से नहीं है। यह भी प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते हैं। प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे हैं चलते रहे। जब इतनी हिम्मत रखी है और ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी सी कमजोरी भी बच्चों को क्यों रह जाए? तो ये प्यार हुआ ना। प्यार वाले की कमी कभी देखी नहीं जाती है, ये है प्यार की निशानी। जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझा जाता है। अच्छा, कोई भी कार्य करो तो कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ, अपना प्रभाव डालो तो वह आपके प्रभाव में आ जाए। और दिल से यही निकलेगा कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हिम्मत का बहुत महत्व है, कभी किसी बात में घबराओ नहीं। हजार भुजाओं वाले आप भी हो, बाप की हजार भुजाएं आपकी भी तो हजार भुजाएं हुई ना। बाप के सहयोगी आपके भी सहयोगी है ना। अच्छा, बॉम्बे साइंस सेंटर की टीचर्स और भाइयों को देख करके बाप दादा बोले, ये सब कार्य समाप्त करके पहुंचे। पास होकर के आए हो कि पास विदानर होकर के आए हो? अच्छा पार्ट बजाए, ये भी स्नेह का रिटर्न आत्मा को प्राप्त होता है। जिसको स्नेह मिलता है या मिला है वो समय पर स्नेह का रिटर्न जरूर करता है। कई आत्माओं की इस समय के पार्ट में भी आवश्यकता है और नई दुनिया के आज में भी आवश्यकता है, तो क्या करेंगे? ड्रामा तो चलना ही है ना। इसलिए जो भी गए हैं व जो भी जा रहे हैं, विशेष आत्माओं की आदि में भी आवश्यकता है। चौथा पेज, अभी नया चैप्टर शुरू करेंगे। जो भी जाने वाले हैं वो नया चैप्टर शुरू करेंगे। योग बल की पैदाइश का नया चैप्टर शुरू करने के लिए शेष आत्माएं चाहिए। ऐसी शेष आत्माएं कौन सी चाहिए? योगी आत्माएं चाहिए ना। निमित्त बहाना कोई भी बन जाता है, लेकिन हिसाब किताब चुकतू भी होना है और सेवा भी होनी है। अभी ये नहीं सोचना कि कृष्ण को जन्म कौन देगा, राधे को जन्म कौन देगा, इस विस्तार में नहीं जाना कि सभी अच्छे अच्छे खास खास रत्न शरीर छोड़ते जाते हैं, तो राधे कृष्ण को जन्म कौन देगा? ये बात नहीं सोचना, इसे विस्तार में नहीं जाना। ये कोई टॉपिक नहीं है, इसलिए कहा कि कर्मों की लीला, वाह वाह। बाकी जन्म तो कोई भी दे, इस बात में नहीं जाना। आपको जाना है या सोचना है क्या करना है? अच्छा, चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को सदा हिम्मत और शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा वाह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद करो नमस्ते। पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो? रूप अर्थात ज्ञानी तू आत्मा भी है और योगी तू आत्मा भी है। जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। बसंत अर्थात ज्ञानी आत्मा, रूप अर्थात योगी तू आत्मा। इसलिए आप सबका स्लोगन है योगी बनो पवित्र बनो माना ज्ञानी बनो। औरों को ये स्लोगन याद दिलाते हो ना, तो दोनों स्थिति सेकंड में बन सकती है। ऐसे ना हो कि बनना चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें, सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। ऐसे नहीं फुल स्टॉप लगाओ अभी और लगे पांच मिनट के बाद, इसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे, पावरफुल योगी नहीं कहेंगे। पावरफुल योगी अर्थात एक सेकंड में संकल्पों को जाम कर दे। पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहां लगे। अगर सेकंड से भी देर हुई तो एक्सीडेंट हो सकता है। फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल, जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लगा लें। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, कैसे भी वाइब्रेशन हो, एक सेकंड की भी देरी न लगे। ये मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्ति है, इसलिए सदा ये प्रैक्टिस करते रहो कि जिस समय और जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं वैसे लगता है या टाइम लग जाता है। चेक करते हो या सारा दिन बीत जाता है और चेक नहीं कर पाते, फिर रात को चेक करते हो, बीच बीच में भी चेक करो। जिस समय बहुत बुद्धि बिजी होती है उस समय ट्रायल करके देखो। बहुत बिजी होते हैं उस समय एक सेकंड के लिए टाइम निकालो। अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटा करके बाप की तरफ लगाना चाहें तो सेकंड में लगती है या नहीं लगती है? ऐसे तो सेकंड भी बहुत है। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं वो रूलिंग पावर के अधिकारी बन नहीं सकते। स्वराज के हिसाब से अभी शेष स्तर है। स्वराज्य आपको शेष स्तर का मिला है ना? स्वराज्य अर्थात स्व माने आत्मा का राज्य। आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करे। ऐसे नहीं आंख को कहो ये देखो और वो देखने लगे कुछ और, कान को कहो कि ये नहीं सुनो ये नहीं सुनना चाहिए और उस बात को सुनते ही रहे, इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहते। कभी कोई कर्मेंद्रिय धोखा न खाए, इसको कहते हैं स्वराज्य। तो राज्य चलाना आता है ना, अगर राजा का प्रजा माने ही नहीं तो उसे नाम का राजा कहेंगे, नाम का राजा कहेंगे या काम का कहेंगे? आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा कहे, मालिक कहे। ये तो आत्मा पीछे परतंत्र बन गई है, कलयुग के अंत में आकर पूरी परतंत्र बन गई है, लेकिन आदि और अनादि स्वरूप तो आत्मा का स्वतंत्र है। तो आदि और अनादि स्वरूप सहज याद आना चाहिए ना। अभी स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो जाते हो, परिस्थितियों के बस मन बुद्धि हो जाती है, व्यक्तियों के वशीभूत मन बुद्धि हो जाती है अथवा मनमत के वशीभूत हो जाती है, तो परतंत्र कहें या स्वतंत्र कहें, मन का भी बंधन न हो। अगर मन का बंधन होगा तो ये बंधन और बंधनों को कहें या स्वतंत्र कहें, मन का भी बंधन न हो। अगर मन का बंधन होगा तो ये बंधन और बंधनों को भी ले आएगा। कितने जन्म बंधन में रह करके देख लिया, अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या? बंधन मुक्त अर्थात राजा स्वराज्य अधिकारी बन जाए, क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता है। इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो, तब अंत में पास विदानर होंगे अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। फर्स्ट माना ही फास्ट, ढीले ढाले नहीं, ब्रेक फास्ट लगे। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं। आप भी ऊंची स्टेज में जा रहे हो, आप कितना ऊंचा जाते हो, तो ब्रेक पावरफुल चाहिए ना, बार बार चेक करो। ऐसा ना हो कि आप समझो ब्रेक बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पर लगे ही नहीं, तो धोखा हो जाएगा ना। इसलिए अभ्यास करो, स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, एक भी संकल्प आगे न चले। तो संकल्पों को जाम करना सीखा है, ब्रेक पावरफुल चाहिए। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं, सिद्धि दिखाते हैं, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, लेकिन ट्रेन को स्टॉप करने से क्या फायदा? जो संकल्पों की ट्रेन चलती है उसको जाम करके दिखाए। तो वाइब्रेशन कंट्रोल हो जाएगा, जब वाइब्रेशन के कंट्रोलर बन जाएंगे तो तीखी सेवा करने लगेंगे। वाइब्रेशन से ही दुनिया बदलनी है, इसको कहते हैं योग बल। आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो, इसमें बहुत से फायदे हैं। आपकी है विधि से सिद्धि और उन रिद्धि सिद्धि वालों की है रिद्धि सिद्धि, उनकी है अल्पकाल की सिद्धि और आपकी है सदाकाल की सिद्धि। तो सभी नॉलेजफुल बन गए ना, रचयिता और रचना की सारी नॉलेज आ गई। दुनिया वाले समझते हैं ये माताएं क्या करेंगी, और ये माताएं ही असंभव को संभव बनाने वाली है। ऐसी आप शिव की शक्तियां हो ना। अच्छा ओम सर। अट्ठाईस एक 2001 गुलजार दादी के द्वारा प्राण अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश। आज विशेष बाप दादा के पास मीठी दादी जी के संदेश के प्रति पहुंची तो बाप दादा ने बहुत बहुत स्नेह और शक्तिशाली रूप से नयन मिलन मुलाकात की और बोले, बच्ची आपकी दुनिया का क्या हाल है? कौन बोले? बाबा बोले, आपकी दुनिया का क्या हाल है? माना बाप दादा की दुनिया और गुलजार दादी की दुनिया अलग अलग है क्या? है कि एक ही दुनिया है? बोलो, अलग अलग दुनिया हुई ना। बाप दादा की दुनिया कौन सी हुई? नहीं, अव्यक्त स्टेज में रहने वालों की दुनिया कौन सी दुनिया हुई? अव्यक्त स्टेज में रहने वालों की दुनिया। और गुलजार दादी की दुनिया कौन सी हुई? साकार दुनिया, व्यक्त दुनिया। तो पूछा, आप क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, आ चुके एक अपना जलवा दिखा रही है। केक अपना जलवा दिखा रही है। 26 जनवरी को गुजरात में अर्थकेक हुआ था ना, और ये संदेश है 28 जनवरी का 2001 का। ये कौन सी दुनिया की बात बताई है? साकार दुनिया की बात बताई कि अर्थकेक अपना जलवा दिखा रही है ना। बाबा बोले, बच्ची प्रकृति को अपना कार्य करना ही है, क्योंकि ड्रामा ने प्रकृति का भी विशेष पार्ट बजाया। बाप दादा ने तो पहले भी कहा है, अभी तक तो एक तत्व अपना पार्ट बजाने के लिए रिहर्सल कर रहे हैं, एक एक तत्व। कभी आंध्र प्रदेश में आंधी का तूफान आ जाता है, कौन से तत्व ने कार्य किया? वायु ने, एक तत्व ने कार्य किया। गुजरात में अभी पृथ्वी हिल गई, कौन से तत्व ने कार्य किया? पृथ्वी तत्व ने कार्य किया। तो अभी तो एक एक तत्व तो कार्य कर रहा है, अपना अपना पार्ट बजाने के रिहर्सल कर रहा है। पांच तत्व तो है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। आकाश में भी ओजोन किरण फट रही है। उससे बहुत प्रकार की बीमारियां बढ़ रही है। तो अभी तक तो रिहर्सल हो रहा है, अभी तो आगे चल के रियल होगा। रिहर्सल में और रियल में बहुत फर्क पड़ जाता है। अभी तो अलग अलग हर एक तत्व कब कोई अपना रूप दिखाई रहे हैं, लेकिन आगे तो पांचों ही तत्व इकट्ठा अपना पार्ट बजाएंगे। इसलिए बाप दादा बार बार बच्चों को कहते हैं कि सदा अंगद मिसल अचल अडोल एक स्थिति में रहो। किसके मिसल? अंगद मिसल। नाम क्या दिया? शास्त्रों में जो भी नाम है काम के आधार पर नाम है। किसके मिसल अचल रहो? अंगद मिसल। अंग माना शरीर का कोई भी अंग, आंख हो कान हो, कान होते हुए भी जैसे न सुने। बम ब्लास्ट हुआ तब कान है सुनेगा नहीं क्या? लेकिन जिसकी उपराम स्टेज होगी उसे अनुभव होगा कि जैसे सुनते हुए नहीं सुना। आंख है देखते हुए न देखो, जिसका मन कंट्रोल में होगा वो ऐसी स्थिति का अनुभव कर सकेगा, तो उसको कहेंगे अंगद। अपने अंग अंग को ही सूर्य सेवा में दे दिया। कोई भी अंग हो, कोई भी कर्मेंद्रिय हो, कर्मेंद्रियां जैसे होते हुए भी है ही नहीं। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बाप है तो बाप के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? फिर निराकारी बच्चे होने चाहिए। इंद्रियां होते हुए भी जैसे है ही नहीं, जैसे शिवलिंग उसको कोई इंद्रियां नहीं दिखाई जाती। ये किस स्टेज की यादगार है? निराकारी स्टेज की यादगार। प्रैक्टिकल में ऐसी निराकारी स्टेज बनाई होगी शिव शंकर भोलेनाथ ने संसार के सामने रहकर, तो उस स्थिति की मंदिर बनते हैं और उसकी पूजा होती है। तो अंगद मिसल अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहो तो आपकी भी शालिग्राम मिसल पूजा होगी। न शिवलिंग को हाथ पांव ना आकाश कान भान दिखाया जाता है और न शालिग्राम को हाथ पांव ना आकाश कान दिखाए जाते हैं। दोनों ही की निराकारी स्टेज है। ये सब साइड सीन्स हैं जो कुछ हो रहा है, इसको साक्षी होकर के देखते चलो। साइड सीन्स होते हैं वो एक तरफ रह जाएंगे, दूसरी तरफ रह जाएंगे, आपको तो आगे बढ़ना है, तो आसरी होकर के उड़ते चलो। समय अनुसार अभी तो बच्चों को स्वचिंतन स्वमान स्वरूप में ही रहना है। स्व के चिंतन में रहो, स्व के मान में रहो और आत्मिक स्वरूप की स्थिति में स्थित रहो। सबको डबल लाइट बनाए उड़ाते रहो। विशेष अवासरी स्टेज में रहने का अभ्यास अति आवश्यक है। कब? जब आखिरी रिहर्सल से रियल होगा, पांचों तत्व इकट्ठे होकर के अपना विस्फोट करेंगे, उस समय कैसी स्टेज होनी चाहिए? अशरीरी स्टेज का अभ्यास पक्का होना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूं, पांच तत्वों का असर किसके ऊपर होगा? जो पांच तत्वों के बने हुए देह के भान में होगा। बाकी गुजरात के बच्चों को विशेष याद देना, बाप दादा तो बच्चों की छत्र छाया है ही, सभी ने अपना अपना अवस्था अनुसार अच्छा पार्ट बजाया। अब भविष्य शक्तिशाली स्टेज को बनाना है, यही अटेंशन रख करके तीव्र पुरुषार्थ करना है। बाकी सब गुजरात के बच्चों को परीक्षा में पास होने की मुबारक है। कहाँ के बच्चों को? गुजरात का बेहद का अर्थ क्या बताया है? जिनके अज्ञान की रात गुजर गई। सीरियल आता है ना शक्तिमान, उसमें दो पार्टियां दिखाई गई हैं। एक पार्टी आसुरी पार्टी क्या कहती है? अंधेरा कायम रहेगा। तो दूसरी पार्टी जरूर अंधेरे को खत्म करने वाली पार्टी है। जैसे दुनिया में भी इंडिया में दो पार्टियां मुख्य हैं, कौन कौन सी? कांग्रेस पार्टी। कौन काव काव बहुत किया वर्षों तक, परिवर्तन कुछ नहीं हो पाया। काव काव की रेस करने में सबसे आगे, और दूसरी पार्टी है जनता पार्टी। नाम क्या दिया? जनता पार्टी। अज्ञानता पार्टी नहीं, लेकिन वो तो दुनियावी पार्टी है। वो कोई ब्राह्मण नहीं है, वो सब अब्राह्मण है, शूद्र है। क्योंकि पवित्रता क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, आत्मा क्या होती है, इस बात की उनको पहचान नहीं। दुनिया का क्या हाल होने वाला है उनको पता नहीं। दुनिया कितनी बदलने वाली है उनको पता नहीं। हम ब्राह्मण बच्चों को पूरी पहचान हो चुकी है, हमारे अज्ञान की रात गुजर चुकी है। इसलिए बोला सब गुजरात के बच्चों को परीक्षा में पास होने की मुबारक। सदा खुश रहो, आबाद रहो, परीक्षाओं में पास रहो। ऐसे कहते बाप दादा ने सभी देश विदेश के बच्चों के प्रति बहुत बहुत याद प्यार दिया, और यही वरदान दिया कि सदा मंजिल पर उड़ते रहना, रुकना नहीं। बाप दादा के साथ उमंग उत्साह से उड़ते चलो, उड़ते रहना, सदा आगे से आगे बढ़ते रहना। किसके साथ? बाप दादा के साथ। उनतीस एक 2000 का दूसरा अव्यक्त संदेश गुलजार दादी के द्वारा। आज हम प्यारे बाप दादा के पास पहुंची, और बाबा को जो वर्तमान समय में अर्थ के कार्य हो रही हैं, और अनाउंस भी होता रहता है कि ऐसे झटके और भी आने वाले हैं, उसका समाचार सुनाया। ये बाप दादा को ले जाके संदेश वतन में संदेश ही जाती है बार बार, और समाचार सुनाती है, इससे क्या साबित होता है? डर लग रहा है क्या? हिल रहे हैं क्या? जिसके ज्ञान की रात, ज्ञान का दिन चल रहा है, उसको तो डरने की बात ही नहीं। जिसके अज्ञान की रात चल रही है उसको तो बहुत डर लगेगा। तो समाचार सुनाया, और बाबा को कहा सब तरफ से आने वाली पार्टियां पूछती हैं कि हम बाबा के प्रोग्राम में आवे। तो बाबा मुस्कराते हुए बोले कि बच्चे देखो, ये प्रकृति के छोटे छोटे प्रकोप तो होने ही वाले हैं। इन छोटे छोटे प्रकोपों से घबरा करके सारे ही माउंट आबू में पहुंच जाएंगे, जहां पानी की बूंद भी नहीं मिलती, तो क्या हाल हो जाएगा? ये प्रकृति के छोटे मोटे प्रकोप तो हो नहीं है। जो हिम्मतवान बच्चे हैं वो कोई भी संकल्प नहीं रखते। क्यों? उनको कोई भी संकल्प क्यों नहीं आता? नहीं, एक तो वो जानते हैं कि ये सब कुछ होना ही है, ये सब कुछ होते हुए भी हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पूरी ट्रेन उलट जाए या पूरी बस उलट जाए या पूरी गाड़ी उलट जाए, जो अज्ञान की रात में होंगे तो अनिश्चय बुद्धि होने के कारण प्राण से हाथ धो बैठेंगे। जैसे आगरा से जाने वाली पार्टी का क्या हुआ, माउंट आबू जाने वाली आगरे वाली पार्टी, बीके की पार्टी, आठ सात आत्माएं सारी की सारी प्राण धो बैठी। क्यों? जब निश्चय बुद्धि है, हमारा बाप दादा रक्षक है, अचानक मौत क्यों होनी चाहिए? अनिश्चय बुद्धि होने के कारण ऐसा होता है। तो बाबा मुस्कराए, क्यों मुस्कराए? कि जो बच्चे पूछते हैं बाबा हम आपके पास आ जावे, इससे क्या साबित हुआ कि गुजरात का प्रकोप सुनकर के वो बहुत भयभीत हो गए। बाप दादा तो कहते हैं को मैं कोई स्थूल स्टेज वाली माउंट आबू में नहीं रहता हूं, अमरनाथ कहा जाता है तो क्या कोई पहाड़ी पर बैठा होगा क्या? पहाड़ी पर बैठने की बात नहीं है, अव्यक्त स्टेज में ऊंची स्टेज में रहने की बात है। तो बच्चे कहते हैं मैं स्थूल स्थान छोड़ करके स्थूल स्थान माउंट आबू में पहुंच जाऊं, उससे काम नहीं बनेगा। इसलिए बाप दादा मुस्कराए, कि इन्होंने कितना ज्ञान धारण किया, क्या स्टेज बनानी है और क्या स्टेज बनाई रही। इसलिए गुलजार दादे से भी कहा तुम्हारी दुनिया का क्या हाल है। तो जो हिम्मतवान बच्चे हैं कोई संकल्प नहीं रखते, जो भी प्राकृतिक प्रकोप हैं वो भला आवे, बाकी जो भय में होंगे अंदर अंदर उनके भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प चलते रहेंगे। उन्हों का मधुबन में आने के बाद भी मन नहीं लगेगा क्या? जो कहते हैं बाप दादा हम आपके पास माउंट आबू चले आवे, तो भले वो चले आवे तो भी रिजल्ट क्या होगा? माउंट आबू में आने के बाद भी उनका मन स्थिर होने वाला नहीं है, उनको अनिश्चय बुद्धि होने के कारण विनाश की ओर जाती रहेंगी। अनिश्चय बुद्धि विनश्यंती, स्थान बदलने से कुछ नहीं होता। इसलिए बोला कि मधुबन में आने के बाद भी मन नहीं लगेगा, इसलिए वे भले नहीं आवे, बाकी हिम्मत रखो, हिम्मत रखने वाले बच्चे भले आवे, बाकी जो भयभीत होकर यहाँ आना चाहते हैं वो भले ना आवे। ऐसे कहते बाबा ने सभी बच्चों को बहुत बहुत याद दी। ओम शांति।